ष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मेलकुटे धाम की स्वागत है आप सबका इस धाम में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। सब संक्षेप में हम चाह रहे हैं कि कुछ इस स्थान के विषय में कहें, ताकि जहाँ पर हम हैं उसके महत्व को समझ सकें। थोड़ा सा घड़ी मुझे चाहिए होगी ताकि समय पर समाप्त कर सकें। यहाँ रख दो सामने, बस नहीं थोड़ा उसको, अच्छा ठीक है बस। सो इस स्थान के महत्व को समझ सकें, इस धाम में आए। आप में से कई लोग पहली बार यहाँ पर आए होंगे आशा है। कितने लोग पहली बार आए हैं? ओ पहली बार, अच्छा तब तो फिर 3-4 घंटे का लेक्चर होना चाहिए इस विषय पर। ये तो बहुत छोटा लेक्चर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण धाम है। भगवान श्री राम आए यहाँ, श्री कृष्ण आए, पांडव आए, और फिर ये जाना जाता है श्रीपद रामानुजाचार्य, जिन्होंने यहाँ कई वर्ष बिताए। तो इसलिए जो पूरा स्थान ये मेलकोटे, मेलकोटे मतलब ऊपर जो है, मेल कन्नड़ा भाषा में मेल मतलब ऊपर उठा हुआ या एलिवेटेड, और कोटे मतलब महल या कह सकते हैं किला। तो मेलकोटे का अर्थ होता है कि जो ऊपर, जैसे हम लोग आ रहे थे तो देखा था कि ऊपर गाड़ी ऐसे चढ़ रही थी, तो ऊपर का जो किला है, महल है, उस स्थान को मेलकोटे कहते हैं। और इस स्थान में जैसे हम बता रहे थे कि जैसे आज शायद हम लोग धनुषकोटी देखने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये वो स्थान है जब भगवान राम ने जैसे रामेश्वर में, रामेश्वरम आप में से कुछ लोग गए होंगे या धनुषकोटी देखा होगा, तो उसी प्रकार जब रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने धनुष से एक बहुत सुंदर तालाब या सरोवर का निर्माण किया था, तो वो स्थान है धनुषकोटी। और श्री कृष्ण भी आए थे, इसीलिए स्थान को यादवगिरी या अर्थात यादवों का पर्वत इस स्थान को कहा जाता है। और ये स्थान जाना जाता है पांडवों के लिए, यहाँ से बहुत निकट है पांडवपुर या पांडवपुरा। आप में से कई लोग वहाँ से आए होंगे, कोई स्टेशन पर उतरे थे पांडवपुरा, तो पांडवपुरा स्टेशन है। ये वो स्थान है जब पांडव वनवास में थे तो वे यहाँ आए थे और यहाँ पर वो रहे थे इस स्थान में, तो इसलिए पांडवपुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत से स्थान हैं जिनमें जब हम लोग जाएंगे तो फिर कुछ समय वहाँ पर उस स्थान के विषय में महत्व बतलाएंगे। लेकिन ये जो स्थान है मेलकोटे, ये स्थान गुरु भक्ति का स्थान है। ऐसा स्थान है जहाँ गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति भक्ति, या गुरु के लिए अपना सर्वस्व दान दे देना या अपने जीवन तक को दांव पे लगा देना, ये मेलकोटे हमें सिखलाता है। क्योंकि ये स्थान है, आज से जब कई वर्षों पूर्व जब श्रीपद रामानुजाचार्य जो श्रीरंगम में रहा करते थे, हम सब जानते हैं कि 4 संप्रदाय हैं और 4 में से एक है श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी का, और वो संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य के करीब 300 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी आए थे, जिन्होंने एक सिद्धांत प्रकट किया कि ये सब मिथ्या है। वो भी सिद्धांत सही नहीं था, मगर किसी उद्देश्य से वो प्रकट हुआ, उन्होंने किया उसको। और श्रीपद रामानुजाचार्य ने जब वेदांत सूत्रों पर अपना भाष्य लिखा, बड़ा प्रसिद्ध भाष्य है रामानुजाचार्य का, तो उन्होंने पूरा जो शंकराचार्य जी का था बड़े विस्तार से खंडन किया। प्रारंभ से ही दूसरा ही जो वेदांत सूत्र है जन्मादिस्य यतः, तो उसमें ही उन्होंने खंडन कर दिया कि जब भगवान सत्य हैं तो उनसे जो आता है वो भी सत्य होगा। तो इस तरह से जो मिथ्या कहना कि ये सब माया है, ये सब धोखा है, इस सब का खंडन बहुत विस्तार से वेदांत सूत्रों में श्रीपद रामानुजाचार्य ने किया। और वे रहा करते थे श्रीरंगम में, जो उनका जो श्री वैष्णवों की पीठ है, कहना चाहिए प्रमुख स्थान है। तो ये जो मेलकोटे है, ये जैसे श्रीरंगम है, जैसे तिरुपति है, ऐसे ही मेलकोटे वैष्णवों के लिए बहुत प्रमुख स्थान माना गया है। और उसका कारण ये है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य यहाँ पर आए, और कैसे आए ये बहुत विशेष कथा है। जैसे हम कह रहे थे कि गुरु भक्ति को प्रकट करता है, तो जहाँ रह रहे थे उस समय के जो राजा थे वहाँ पर कोलतुंगा, वो राजा शिवजी के भक्त थे, और वे ये जानते थे कि रामानुजाचार्य बहुत बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवों के प्रमुख हैं। अगर इन्होंने शिव भक्ति स्वीकार कर ली, अगर ये शिव जी के भक्त बन गए, तो फिर सारी दुनिया में शिव जी के भक्ति का प्रचार होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि मुझे उनको बुलाना चाहिए, यहाँ पर वाद विवाद होना चाहिए, अगर किसी तरह से हमारे जो पंडित हैं वो हरा नहीं पाए रामानुजाचार्य को, तो फिर उनको हम मार डालेंगे यहीं पर, तो सारा जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव भक्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। तो राजा ने निमंत्रण भेजा रामानुजाचार्य को, और महापूर्ण जो उनके गुरु हैं उनको निमंत्रण भेजा, आप आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। साधारणतः जब साधुओं को बुलाया जाता है, और वो भी जहाँ प्रचार का अवसर हो, तो साधु चले जाते हैं। तो रामानुजाचार्य ने जाने की तैयारी की, लेकिन उनके शिष्य थे कुरेश, उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये राजा ये शिवजी का भक्त है और उसी उन्हीं को प्रमोट बहुत ज़्यादा उस भक्ति का प्रचार करता है, और ये आपको बुलाकर वहाँ कथा करवाए, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कुरेश ने, इसीलिए हम कह रहे कि ये स्थान जो है गुरु भक्ति के लिए, तो कुरेश ने रामानुजाचार्य से कहा कि ये केवल आपको मारने के लिए व्यवस्था की गई है, आपको आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप नहीं जाइए, आपकी जगह हम जाएंगे। अच्छा, ये वो समय था जहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था ही नहीं, तो किसी को वो राजा को वो फोटो नहीं थी रामानुजाचार्य की, या प्रसिद्ध उस समय रामानुजाचार्य प्रसिद्ध थे, लेकिन सबको नहीं पता था कि यही है रामानुजा, ऐसा होता था कई बार। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने कहा कि आपकी जगह हम जाएंगे, और महापूर्ण दो थे। तो रामानुजाचार्य ने पहले तो मना किया कि कौन जो भक्त है, कौन जो गुरु है, वो कहेगा कि ठीक है तुम जाओ मरो मेरे लिए, कौन डरता है मरने से, आप लोग तो कोई नहीं डरते ना, कोई डरते हैं आप में से कम किसी ने कहा तो सही। तो रामानुजाचार्य ने कहा हो ठीक है जो भगवान की इच्छा, लेकिन कुरेश ने कहा कि अगर आप रहेंगे ठीक है, मृत्यु तो सबको आनी है, वो तो कोई घबराता नहीं है, लेकिन अगर आप रहेंगे तो आप बहुत प्रचार कर सकेंगे, कई लोगों को भक्त बना सकेंगे, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। जब हम ये सुन रहे थे तो हमें हरिदास ठाकुर का स्मरण हो रहा था, हरिदास ठाकुर ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से यही कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु से जब उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ, तो महाप्रभु ने कहा आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। और हरिदास ठाकुर ने कहा कि दुनिया में कितनी चींटियाँ मरती हैं ना, एक चींटी मर जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है दुनिया में। तो कुरेश ने भी यही कहा कि आपके रहने से बहुत प्रभाव है। देखिए साधु संतों का पृथ्वी पर रहना, केवल रहना, यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए दर्शन हो सकते हैं। हम लोग सन्यासियों के दर्शन करते हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के दर्शन करते हैं, और धीरे धीरे ये समय आने वाला है जब ये दर्शन नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें हर अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने फिर इस बात पर स्वीकार किया कि ठीक है, वे वहाँ से चले जाएंगे। और वे भी गए और कई जो वैष्णव थे चले गए। और रामानुजाचार्य ने ऐसा वर्णन है कि कुरेश के वस्त्र, सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया, क्योंकि सैनिक जो आ रहे थे बुलाने के लिए, पकड़ने के लिए, उनको पता था कि सन्यासी हैं, सैफरन में हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के कपड़े लिए और अपने कपड़े अपने शिष्य को दिए। दंड ग्रहण किया कुरेश ने, भगवे वस्त्र ग्रहण किए कुरेश ने। किस लिए? मान सम्मान के लिए नहीं, अपने गुरु की सेवा के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए गुरु पर उन्होंने सैफरन धारण किया, दंड धारण किया। और फिर वो और महापूर्ण गए राजा के पास। तो प्रश्न आता, महापूर्ण क्यों गए? जब रामानुजाचार्य को कहा था कि आपकी रक्षा करनी है, तो महापूर्ण को भी कहना चाहिए था कि भाई आप भी कहीं चले जाओ श्रीरंगम से बाहर। तो कहा गया था उनको भी, लेकिन महापूर्ण ने कहा मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मृत्यु आनी आ जाए। तो उनको उन्होंने कहा अब मैं कहीं नहीं जा, तो इसलिए महापूर्ण रहे और कुरेश। तो ये दोनों गए राजा के पास। ये बहुत लंबी कथा है, वहाँ क्या संवाद हुआ, बहुत सुंदर संवाद हुआ। और कुरेश ने राजा के जितने विद्वान पंडित थे वहाँ, जो स्थापित करना चाहते थे कि शिवजी श्रेष्ठ हैं, तो उनको परास्त किया, बहुत सरल शब्दों में परास्त किया। जैसे आखिरी में उन्होंने ये भी कह दिया कि अरे द्रोण भी शिव से श्रेष्ठ होते हैं। द्रोण शिव से मतलब ये एक माप नापने का जो तरीका होता है, उसमें एक शिव आते हैं, द्रोण आते हैं उस समय पे। तो द्रोण मतलब एक नापने, जैसे एक किलो आधा किलो, तो कोई कहे कि एक किलो आधा किलो से ज़्यादा होता है, तो एक किलो मतलब समझ लीजिए द्रोण और आधा किलो शिव। तो उन्होंने इस दृष्टि से कहा कि द्रोण भी शिव से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने उनकी आंखें निकलवा दी, बहुत क्रूरता दिखलाई, इनकी आंखें निकाल दो, और गरम सलाखों से आंखों को निकाल दिया गया। तो कुरेश जानते थे कि मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे मारा जा सकता है, लेकिन अपने गुरु की रक्षा के लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। और ये वो समय था जब रामानुजाचार्य, वह जब उन्होंने श्रीरंगम छोड़ा तो वो यहाँ पर आए, इस स्थान पर। यहाँ पर उन्होंने करीब 12 वर्ष बिताए इस मेलकोटे स्थान में, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से किए। जैसे हम लोग जो मंदिर, प्रमुख मंदिर यहाँ देखते हैं, तो उस समय विग्रह भी ऐसे ही, मतलब समझ लीजिए कि पड़े हुए थे, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर क्षत विक्षिप्त हो चुका था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो रामानुजाचार्य ने आकर उसको पुनः स्थापित किया। आज जो हम लोग मंदिर देखते हैं, भगवान की सेवा देखते हैं, ये रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। फिर यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने कि यहाँ के जो उत्सव विग्रह थे, जिनका नाम है रामप्रिय, रामानुज के प्रिय या रामप्रिय, उस समय भी था रामानुज प्रिय के, तो बाद में हुए, पर रामप्रिय। तो उस समय मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से उस विग्रह को दिल्ली ले गए थे। तो दिल्ली जब वो पहुँचे थे वहाँ पर, तो यहाँ जो उत्सव विग्रह थे वो दिल्ली में थे। तो उस समय रामानुजाचार्य को जब पता चला, जब यहाँ रह रहे थे रामानुजाचार्य, तो उन्होंने कहा कि हम लेकर आएंगे। तो रामानुजाचार्य दिल्ली गए थे यहाँ से, केवल उन विग्रह को लाने के लिए। तो विग्रह बहुत पड़ा हुआ था, ऐसे थे उन, एक वहाँ पर हो गया था कि कुछ समय हो गया था विग्रह रहते हुए, तो जो सुल्तान की पुत्री थी उसको बहुत आसक्ति हो गई थी उन विग्रह से, वो हमेशा उन विग्रह के साथ रहती थी, छोड़ती नहीं थी। तो जब रामानुजाचार्य गए, उन्होंने कहा, उनकी भक्ति को देखा राजा ने, तो राजा बड़े प्रभावित हुए, सुल्तान जो थे। तो खैर फिर भी वो उनकी भक्ति को देखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, बहुत सारे और विग्रह थे, राजा जहाँ जाते थे वो सुल्तान उठा लाते थे, तो उन्होंने कहा आप देख लो कौन है। अब कैसे इतने सारे विग्रहों में, रामानुजाचार्य ने तो देखे नहीं थे पहले, तो कैसे पता चले। तो वर्णन है कि रामानुजाचार्य ने केवल आवाज़ लगाई रामप्रिय को, उनको आवाज़ लगाई भगवान के, और वो उनकी गोद में आए, ऐसा वर्णन किया जाता। और जब लेकर चले रामानुजाचार्य, अब रामानुजाचार्य बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों का कभी भी मन बदल सकता है, तो जल्दी से पहले पहुंच जाएं, स्थापित कर दें। तो जब वो चले गए तो उनकी जो पुत्री थी सुल्तान की, वो बहुत दुखी हो गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो चाहती थी बस मुझे उनके दर्शन, मुझे वो कैसे वो कोई ले गया। देखिए भगवान किस तरह से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। सुल्तान की पुत्री जिसने बचपन से कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, राम का नाम नहीं सुना, भगवान की भक्ति नहीं की, वो इतना आसक्त हो गई विग्रह से। इसीलिए विग्रह जो होते हैं, हम लोग जब दर्शन करें, चाहे योग नरसिम्हा में गए या अन्य मंदिरों में गए, तो हमें उस भाव में दर्शन करने चाहिए कि प्रेम उत्पन्न हो। सोचिए ऐसे वो पुत्री जिसने कभी बचपन से कभी नाम नहीं सुना, भक्ति नहीं की, उसको आकर्षण हो जाता है, हमें कितना आकर्षण होना चाहिए विग्रहों से। हम जिन मंदिरों में, अपने अपने मंदिर में रहते हैं, वहाँ के विग्रहों से कितना आकर्षण होना चाहिए। हम लोग तो छोड़कर आना बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को ना, आँखों में आंसू नहीं आते हैं, राइट? छोड़कर आए राधा पंडरीनाथ और राधा गोविंद जी सबको, किसी की आँखों में आंसू आ रहे हैं? हाँ, ये दर्शन नहीं हो रहे हैं। आसक्ति चाहिए, वो प्रेम चाहिए। तो भगवान के प्रति जब ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो उनकी पुत्री, सुल्तान की पुत्री रह नहीं पाई भगवान के विरह में, उसने खाना पीना छोड़ दिया। सुल्तान परेशान हो गया, बहुत समझाया, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं कि मुझे तो वही चाहिए। ऐसा प्रेम उत्पन्न करना चाहिए भगवान के प्रति। तो खैर वो आई, तो वो भी पूरा, राजा ने सेना वेना भेजी कि जाओ देखो कहाँ है, वापस लेकर आओ। और रामानुजाचार्य इत्यादि लोग बहुत जल्दी निकल रहे थे वहाँ से कि हम जल्दी से आएं। तो इसीलिए यहाँ जब आए रामानुजाचार्य, तो जल्दी जल्दी उन्होंने एक अंदर स्थान पर उनको स्थापित किया। और फिर जब वे आई यहाँ पर, उनकी पुत्री सुल्तान की, तो बहुत यहाँ रहे, ऐसे वर्णन है कि उन्होंने अपने यहाँ देह भी छोड़ दिया उनकी पुत्री ने। तो इतनी आसक्ति, इतना प्रेम। तो एक तरफ ये स्थान है गुरु भक्ति को दर्शाता है, रामानुजाचार्य के लिए अपने प्राणों को देने के लिए कुरेश तैयार, वो आँखें दे दी। यही रामानुजाचार्य हैं, देखिए, जिस जब शिष्य भगवान अपने गुरु के लिए इतना समर्पण करता है, तो गुरु का क्या भाव होता है। यही रामानुजाचार्य हैं, जब कांचीपुरम में थे वरदराज जी के वहाँ, तो उन्होंने कुरेश से कहा, कुरेश जाओ मांगो, आंखें मांग लो, भगवान से आंखें मांग लो, मेरी वजह से तुम्हारी आँखें चली गई हैं, मांग लो। कुरेश, इच्छा नहीं थी भगवान के सामने जाके कह कि मुझे आँखें चाहिए, बहुत बार कहते थे। तो एक समय कुरेश ने जाकर कुछ प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया कि कुरेश ये तो मेरे धाम आएगा ही आएगा निश्चित, और इसके साथ जितने लोग संबंधित है वो भी आएंगे। तो जब ये बात आकर कुरेश ने अपने गुरु रामानुजाचार्य को बताई, अब देखिए उनके गुरु हैं, तो रामानुजाचार्य को उन्होंने बताई कि ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी इनसे संबंधित है वो भी उनके धाम जाएगा। रामानुजाचार्य ने अपना उत्तरीय उतारा और ऐसे जोर से हवा में घुमाने लगे, नाचने लगे रामानुजाचार्य। वो सब हैरान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, कि कुरेश जा रहा है इसीलिए इतने प्रसन्न है गुरु। उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुमने सुना नहीं, क्या कहा है भगवान ने, जो भी इनके साथ संबंधित है वो भी जाएगा, मैं गुरु हूँ, संबंध है ना, तो मतलब मैं भी जाऊँगा। सो ये प्रेम गुरु का एक शिष्य के प्रति होता है जब शिष्य का समर्पण इतना तीव्र होता है। जहाँ समर्पण है वहाँ हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, षडंग शरणागति होई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो कृष्ण किसकी प्रार्थना सुनते हैं? षडंग शरणागति। और ये शरणागति का प्रारंभ होता है गुरु की भक्ति से, गुरु दास बनने से। इसलिए भले हम लोगों के कोई भी नाम हो, हम भगवान के दास नहीं, हम गुरु दास पहले बनना है, तब कृष्ण दास बन सकते हैं। तो कुरेश ये समर्पण उन्होंने प्रकट किया। तो 12 वर्ष यहाँ रहे रामानुजाचार्य, उत्सव मूर्ति लाए, मंदिर की स्थापना की। पुष्करणी अर्थात जो सरोवर होता है मंदिर के निकट, तो उसको भी रामानुजाचार्य ने स्थापित किया यहाँ पर। और यहीं से उन्होंने भक्ति का प्रचार फिर प्रारंभ किया, क्योंकि अब वहाँ पर जाना ठीक नहीं था, राजा बहुत विरोधी थे। तो यहाँ के उस समय राजा थे विष्णु धर्म, तो उनको उन्होंने वैष्णव बनाया। हालांकि वो जैन धर्म से थे, लेकिन उनको वैष्णव बनाया रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य जैसे आचार्य, इतनी शक्ति उनके अंदर होती है कि वे किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं और उसको भक्त बना सकते हैं। और हम लोग ये श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद को केवल कुछ लोगों ने देखा, हमने कई भक्तों के ऐसे अनुभव सुने। तो एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, प्रभुपाद कॉलेज में बैठे थे अंदर रूम में, ये बाहर से जा रहे हैं, इन्होंने खिड़की से श्रील प्रभुपाद को देखा बैठे हुए। बस मैं बोला नहीं, इनको कुछ मुझे जानना है, कौन है ये, क्या है, आए और फिर जीवन समर्पण। ऐसे कई जगहों पर हुआ है, प्रभुपाद को देखकर, प्रभुपाद किसी ने पानी पीते देखा प्रभुपाद को और प्रभावित हो गए कि ये पानी पीते देखकर, हम लोग कितने सालों से पानी पी रहे हैं, कोई प्रभावित ही नहीं होता। ये भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। और उनके शिष्यों में उनको हम लोग देखते हैं कि केवल उनके दर्शन से एकदम ऐसा लगता है कि बस भक्ति बहुत तीव्र हो गई है। तो ऐसे रामानुजाचार्य ने यह राजा को भी परिवर्तित किया। और फिर यहाँ पर इसलिए रहे इतने समय कि यहाँ सुरक्षा थी। अब राजा भक्त हो गया, वैष्णव हो गया, तो उसने पूरी सुरक्षा यहाँ पर प्रदान थी। तो यहाँ से उन्होंने भक्ति का काफ़ी प्रचार किया, भगवान के गुणों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकट किया अपने लेखनी के द्वारा भी थोड़ा बहुत। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है मेलकोटे, क्योंकि इतने भगवान राम आए, कृष्ण आए, पांडव आए, रामानुजाचार्य यहाँ रहे, तो केवल उनके रहने से ये स्थान में शक्ति आ जाती है, जिस स्थान में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए हमें इस स्थान में आकर, अब जैसे जैसे हम अलग जगहों में जाएंगे तो क्या करना है, श्रवण ज़्यादा करना है। आज सुबह भी महाराज कह रहे थे कि श्रवण करना, नहीं तो तीर्थ में आकर बस यह तीर्थ सलीले बुद्धि की गए, स्नान वनान कर लिया, यात्रा पूरी हो गई बस। नहीं, जहाँ श्रवण के अवसर है वहाँ श्रवण पहले करना है हमें, और स्मरण करना है श्रीपद रामानुजाचार्य का, कुरेश का, जिन्होंने इस तरह की भक्ति दिखलाई, गुरु भक्ति, ऐसे शिष्य बने। तो हम सबको भी ये प्रण लेना है स्थान पर आकर कि जिस तरह कुरेश ने अपने गुरु के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिए, जानते थे मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने सैफरन धारण किया, दंड धारण किया, केवल इसलिए कि वो सोचें कि ये रामानुजाचार्य, इसको मार दो। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण ये स्थान पर हमें दिखलाने का प्रयास या सीखना है कि हम भी आगे चलकर इस तरह की भक्ति को हम लोग प्रकट कर सकें। दूसरी चीज़ जो समर्पण, जैसे आसक्ति विग्रहों के प्रति, भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं, भगवान के रूप हैं, परारूप है, अंतर्यामी रूप है, अवतार है, व्यूह रूप है, लेकिन उन रूपों को देखना, उन रूपों को समझना हमारे लिए इसमें संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सारे रूपों की शक्ति भगवान विग्रह में प्रदान करते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, उनके दर्शन कर सकें। तो ऐसे भाव में हमें विग्रहों से भी आसक्ति उत्पन्न करनी है। और रामानुजाचार्य ने इस बात को इसलिए स्थापित किया, विग्रहों की स्थापना इसलिए की ताकि जो मायावाद सिद्धांत है कि सब कुछ माया है, जगत मिथ्या है, सब कुछ बेकार है, जो भगवान आते हैं वो भी माया का रूप है, उसका खंडन हो सके। तो इस दृष्टि से हमें इस आसक्ति को जरूर उत्पन्न करना चाहिए इस स्थान पर आकर। और फिर उन ये भाग्य समझना चाहिए कि हम उन स्थानों पर चल रहे हैं जो भगवान राम चले, कृष्ण चले, पांडव चले, रामानुजाचार्य रहे, तो पवित्र स्थान है। इसको इस भाव में हमें रहकर और श्रवण के द्वारा इस यात्रा को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। इसलिए अतुल कृष्ण प्रभु जी की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। अभी इच्छा हो रही थी और अधिक सुनना चाहिए, तो जैसे अवसर प्राप्त होगा अलग स्थानों पर भी जाएंगे तो उनकी और विशेष महिमा को हम श्रवण करेंगे। तो अभी अधिक समय न ले तुरंत हम यहाँ पर दर्शनार्थी और श्रील प्रभुपाद गुरु पूजा है और तदुपरांत परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी द्वारा कथा यहाँ पर होंगी। तो सभी भक्त बने रहे और विशेष अनुरोध है, आग्रह है कि आपके ग्रुप में जो भक्त है जो अभी भी यहाँ